प्रणाली गुस्से में कुछ बोलने ही वाली थी, पर सक्षम ने उसके हाथों को अपने हाथों में पकड़ लिया और खुद उस औरत से कहता है, अरे नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है, दरअसल बात यह है कि। तभी मीनाक्षी बोल पड़ी, अरे कोमल, तू भी कैसी बातें कर रही है, मैंने कहा था ना कि मेरी बहू राजघराने से है, अरे राजकुमारी है किसी रियासत की, तुझे लगता है इसे कुछ आता भी होगा। तभी दूसरी औरत बोली, अरे ये क्या बात हुई, राजघराने की है इसका मतलब ये नहीं है कि लड़कियों वाले काम नहीं आएंगे, राजा साहब अपनी बहन को तो कुछ सिखा नहीं पाए हैं, फालतू में ही लोगों को ज्ञान बांटते रहते हैं। ये बस आखिरी सब्र था प्रणाली का, अपने लिए तो वो कुछ सुन भी लेती, लेकिन आस्तिक के लिए तो वो किसी से एक शब्द ना सुने। प्रणाली ने सक्षम के हाथों से अपना हाथ खींचा और गुस्से में उस औरत को देखकर कहने वाली थी कि सक्षम ही बीच में आ जाता है। राजा साहब ने अपनी बहनों को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं और मेरी पत्नी के संस्कार आप लोगों के सामने ही हैं, कि आप लोगों की फालतू बातों का वो जवाब नहीं दे रही है। और हाँ, सिंगार करती औरतों से ज्यादा बेहतर संघर्ष करती औरतें हैं। मुझे ये नहीं पता कि मेरी पत्नी को घर के काम आते हैं या नहीं, लेकिन हाँ, वो एक सफल बिजनेस वूमन है। प्रणाली हैरानी से सक्षम को देखते रह जाती है, उसने सोचा नहीं था कि सक्षम उसकी साइड लेगा। तभी दूसरी औरत ने कहा, देखो सक्षम, बुरा मत मानो, हम तुम्हारी पत्नी की बुराई नहीं कर रहे हैं और हम क्यों से कुछ बोलेंगे, लेकिन समाज में उठने बैठने की भी अपने कायदे और कानून होते हैं। अब तुम्हारी पत्नी को ही देख लो, राजघराने से है पर इसे देखकर लगता नहीं है कि ये अपने घर से कुछ लेकर आई है, गले में नहीं हीरे का हार है और ना ही हाथ में कोई सोने के कंगन, वो इसीलिए क्योंकि इसे इन सब चीज़ों का शौक नहीं है। ये आवाज़ दरवाजे से आई थी, सबका ध्यान एक साथ दरवाजे की तरफ जाता है। प्रणाली और सक्षम तो हैरान हो जाते हैं, दरवाजे पर इस समय अरुणिमा और जानवी खड़ी थी, उनके साथ कम से कम नहीं तो एक पूरे नौकरों की फौज खड़ी थी। दो के हाथों में तो प्रणाली का बैग था और बाकियों के हाथ में बड़े बड़े थाल जो उन्होंने लाल कपड़े से ढके हुए थे। अरुणिमा सक्षम को देखकर कहती है, क्या हम अंदर आ सकते हैं? सक्षम जल्दी से अपनी जगह से खड़ा होता है और कहता है, रानी साहिबा आप आइए ना, अंदर आइए। सब लोग हैरानी से अरुणिमा और जानवी को देख रहे थे और आपस में खुसुर फुसुर होने लगी थी। अरुणिमा के बारे में बातें हो रही थी, कुछ ने अरुणिमा को न्यूज़ में देखा था तो कुछ ने पेपर में। सब लोग आपस में बात कर रहे थे कि ये तो सिंघल की रानी है। अरुणिमा और जानवी प्रणाली के पास आते हैं, जानवी इशारा करती है और वो सारे नौकर उन बड़े बड़े थाल को सामने लगे टेबल पर रख देते हैं। अपने सामने इतने सारे लाल रंग के कपड़ों से ढके हुए थाल को देखकर सबकी निगाहें एक साथ पड़ी हो जाती हैं। अरुणिमा के इशारा करने पर सारे नौकरों ने एक साथ उन थाल के ऊपर से कपड़ा हटा दिया और सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन सारी बड़ी बड़ी थालों में गहने रखे हुए थे, सोने के, चांदी के, हीरे के गहने और साथ में सोने की कटोरियां, चम्मच और थाली भी। दो थाल तो पूरी बनारसी और कांजीवरम साड़ियों से भरी हुई थीं। इतना सारा कुछ सामने देखकर उन सारी औरतों की आंखें फटी की फटी रह गईं, यहां तक कि मीनाक्षी की आंखें तो बाहर निकलने को हो रही थीं। अरुणिमा सभी औरतों को देखती है और कहती है, वो क्या है ना, हमारे यहाँ पर एक रस्म है कि दुल्हन की विदाई सूरज निकलने से पहले होती है, इसीलिए जब प्रणाली की विदाई हुई तो सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि हमें मौका ही नहीं मिला कि हम इसके साथ कुछ भिजवा सकें, लेकिन हम अपनी बेटी को खाली हाथ कैसे भेजेंगे, इसीलिए हम लोग खुद ये तोहफा लेकर आ गए। वो औरत जिसे मीनाक्षी लेकर आई थी वो बड़ा सा मुँह फाड़ते हुए कहती है, ये तोहफा है, उनके यहाँ पर तोहफा ऐसा होता है तो भेंट कैसी होती होगी। प्रणाली हैरानी से अरुणिमा को देखते रह जाती है, आज तक उसने अरुणिमा के साथ कैसा कैसा व्यवहार किया था, जीवन को लेकर अरुणिमा को कितना कुछ सुनाया था, लेकिन फिर भी अरुणिमा यहाँ पर उसकी साइड ले रही है। सिंघल पुलिस हेडक्वार्टर। आस्तिक का इन्वेस्टिगेशन हो गया था, उससे कुछ देर पूछताछ की गई जिसमें आस्तिक ने सही सही जवाब दिया। वो पुलिस स्टेशन से बाहर आ रहा था और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था, पर उससे पहले कि आस्तिक अपनी गाड़ी तक पहुँच पाता उसे पीछे से रजत की आवाज़ आती है, राजा साहब। आस्तिक पलट कर रजत को देखता है, आस्तिक की आंखों में इस समय शेड लगा हुआ था। रजत आस्तिक के पास आता है, आस्तिक अपनी आंखों से शेड उतारता है, उसे फोल्ड करते हुए कहता है, खुशी हुई ये जानकर कि तुम अपने देश के लिए ईमानदार हो, और अगर बात अपने फर्ज की आती है तो तुम किसी का भी सामना कर सकते हो, भले ही वो कहीं का राजा हो या फिर देश का कोई नेता ही क्यों ना हो। पर तुम्हें नहीं लगता रजत की चीजें इतनी बिगड़ती नहीं, अगर तुमने इस बारे में मुझे पहले ही बता दिया होता तो। रजत ने कहा, सोचा तो मैंने भी यही था कि मुझे इस बारे में शायद आपसे पहले बात करनी चाहिए, पर फिर ये सोचकर पीछे हट गया कि आप मेरी बात पर यकीन क्यों करेंगे, और फिर एक डर मेरे मन में ये भी था कि कहीं आप मेरी किसी बात की सज़ा अरुणिमा को ना दे। जैसे ही रजत ने अरुणिमा को सज़ा देने की बात कही, आस्तिक की आंखें छोटी हो गईं, उसने घूर कर रजत को देखते हुए कहा, क्या उन्होंने तुमसे कुछ कहा है? रजत हंसते हुए कहता है, पता नहीं राजा साहब, जब से शादी हुई है तब से वो गूंगी हो गई है, किसी के सामने कुछ कहती ही नहीं है, भले ही वो अपने जुबान से कुछ ना कहे पर उसकी आंखें बहुत कुछ बोलती हैं, उसकी आंखों में देखा है मैंने एक डर। आस्तिक की आंखें छोटी हो गई, उसने रजत को घूर कर देखा और कहा, उसे किस बात का डर है, रानी है यहाँ की। रजत हंसते हुए कहता है, एक उपाधि मिल जाने से अगर सब कुछ मिल जाता ना राजा साहब, तो शायद बड़े बड़े नेता अभिनेता कभी आत्महत्या नहीं करते।